Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः। मित्रों, हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे और कल बहुत ही सुंदर चर्चा रही हमारी। एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की भी बहुत चर्चा होती है और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 80% जो कम्युनिकेशन है वो नॉन वर्बल ही होता है। और इसके लिए एक बहुत सुंदर एक प्रसंग पहले से ही ये चला आता है, कालिदास जी के समय की बात है कि वैसे कहा जाता है कि वो थोड़े से बुद्ध थे पहले, तो वो जिस शाखा को काट रहे थे उसी शाखा पे वो बैठे हुए थे ऐसा कहा जाता है। जिस राज्य में वो थे वहाँ की राजकुमारी विद्योत्तमा बहुत ही विद्वान थी और उसने अपने पिता से जिद कर रखी थी कि मैं अपने से भी ज़्यादा विद्वान व्यक्ति से ही शादी करूँगी। उनके पिता ने कहा, एक वर रुचि नाम के बहुत बड़े विद्वान थे, कि आप इससे शादी करो, लेकिन उनको घमंड इतना था कि कहा कि नहीं, जो मुझे शास्त्रार्थ में हराएगा उससे ही मैं शादी करूँगी। अब वर रुचि को लगा कि इसका घमंड तोड़ना होगा और जब पता चला कि कालिदास ऐसे हैं कि जिस शाखा पे बैठते हैं उसी को काटते हैं, उसके पास पहुँचे, उन्होंने बात की और उन्हें समझा दिया कि जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा ही करना और जो सभा है वहाँ पे तुम चलना, बस मुँह मत खोलना, बस बाकी चीज़ें उन्होंने सब सिखा दी। अब जब ये सभा में पहुँचे कालिदास जी, अब जो विद्योत्तमा थे वो सामने बैठी शास्त्रार्थ के लिए, ये कह दिया गया कि कालिदास जी बहुत बड़े विद्वान हैं, विद्वान की तरह ही पंडित की तरह उनको सजा दिया गया था और वो वहाँ थे, ईशान से वहाँ पे बैठ गए, मौन है, बोलेंगे नहीं। हाँ, अब ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें शास्त्रार्थ होगा। अब विद्योत्तमा ने एक उंगली दिखाई, तो जब एक उंगली उन्होंने दिखाई तो कालिदास जी ने दो उंगली दिखाई, तो इसका अर्थ पूछा गया, कहा कि भाई, विद्योत्तमा ने कहा कि मैंने एक उंगली इसलिए दिखाई कि परमात्मा शिव एक हैं, आपने दो उंगली क्यों दिखाई? तो उनके साथ जो वर रुचि थे वो बैठे हुए थे और वो इसका उत्तर देते हैं, वो कहते हैं कि परमात्मा है तो एक, शिव एक है, लेकिन बिना शक्ति के वो कोई कार्य नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने दो उंगली दिखा दी कि एक तो वो है लेकिन अकेला संसार में कुछ नहीं कर सकता, उसे शक्ति की आवश्यकता होती है। अब उसके पश्चात जो विद्योत्तमा थी उन्होंने पांच उंगली दिखाई, तो उन्होंने कालिदास जी ने पूरा एक मुक्का दिखा दिया। तो ये विद्योत्तमा ने कहा, मैंने पांच उंगली इसलिए दिखाई थी कि हमारी पांच इंद्रियां होती हैं, आपने मुक्का क्यों दिखाया? तो वर रुचि ने कहा कि मुक्का इन्होंने इसलिए दिखाया कि इन पांचों इंद्रियों पे हमें संयम रखना चाहिए, तभी हम जीवन का संपूर्ण आनंद ले सकते हैं। ऐसी ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत सारी हुई और विद्योत्तमा को अंततः हारना पड़ा और उनसे विवाह करना पड़ा। और जब बाहर निकले, वो विवाह तो खैर बाद में हुआ, जब बाहर निकले कालिदास जी, तो वर रुचि ने उनसे पूछा कि जब राजकुमारी ने एक उंगली दिखाई तुम्हें तो तुमने दो क्यों दिखाई? कालिदास ने कहा कि वो कह रही थी, मुझे ऐसा लगा कि एक उंगली दिखा के कि मैं तुम्हारी एक आंख फोड़ दूंगी, तो मुझे लगा कि वो मेरी एक फोड़ेगी, मैंने दो दिखा दी कि मैं तुम्हारी दोनों आँखें फोड़ दूंगा। और उन्होंने कहा कि अच्छा, जब पाँच उंगली दिखाई तो कालिदास जी ने कहा कि मुझे लगा कि वो मुझे थप्पड़ मारने के लिए कह रही कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी, तो उन्होंने कहा कि यदि वो थप्पड़ मारेगी तो मैंने मुक्का दिखा दिया कि मैं मुक्का मारूंगा। तो खैर, इस हद तक बात थी, लेकिन शादी हुई उन लोगों की। थोड़े समय के बाद ही विद्योत्तमा को पता चल गया कि वे वैसे नहीं हैं और उन्हें महल से बाहर निकाल दिया, लेकिन वही कालिदास इस घटना के बाद बहुत ही महान विद्वान बने। तो बात मित्रों ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की तब से चली आ रही है और अब भी वास्तव में, जैसे कल भी भ्राता जी कह रहे थे कि हम मुस्कुराकर या माँ अपने बच्चे से किस प्रकार बात करती है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कम्युनिकेशन में। और जब बात 80% की आती है कि 80% हम इस कम्युनिकेशन का सहारा लेते हैं, तो यदि हम इसमें भी बहुत महारत हासिल कर लें तो जीवन सचमुच बहुत सफल हो सकता है। आज इसकी चर्चा भ्राता जी से करेंगे, आइए पहले उनका अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है।
शुक्रिया।
इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में भ्राता जी क्या?
एक्चुअली यही बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे हमने पीछे भी चर्चा की थी
जी जी,
कि शब्दों से तो बहुत सारी गलतियां मनुष्य के पास होती हैं, कुछ भी बोल दे दूसरा कुछ भी उत्तर दे, जैसे बात के उसने कहा एक तो एक उंगली फोड़ेगी दोनों फोड़ देता हूँ, तो कहीं क्रोध आ जाता है, कहीं अहम जागृत हो जाता है, मनु सोचता है इसने मुझे बुरा बोला तो मैं इसको और बुरा बोलूँ, तो गड़बड़ सारी हो जाती है। लेकिन अगर हम उन्हें अच्छे वाइब्रेशंस देने लगे, जैसे दो शब्द मैंने यूज किए और वही सबसे परफेक्ट शब्द हैं, स्नेह और सद्भावना। तो हमारे शब्द भी बहुत अच्छे रहेंगे और कम्युनिकेशन बहुत सुंदर हो जाएगा। इसलिए वर्बल के साथ ये जो स्पिरिचुअल चीजें हैं, मैं इसको नॉन वर्बल न कह के स्पिरिचुअल कहूंगा, यानी वाइब्रेशंस के माध्यम से जो हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो हमारा कम्युनिकेशन बहुत सुंदर होगा और ये जो गैप होता है और झगड़े बढ़ते हैं और टकराव होते हैं, इसे हम बच सकते हैं।
बिल्कुल। तो इसमें फिर परफेक्शन कैसे लाई जाए बेहतर जी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चलिए बोल के तो हम एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचा देते हैं, लेकिन हम ये भी सुना करते थे कि टेलीपैथी भी कोई चीज होती है कि हम मन के द्वारा भी अपनी बातें दूसरे तक पहुंचा देते हैं, तो ये भी कितना संभव है और इसमें कैसे परफेक्शन लाई?
देखिए, जो कुछ हम सोचते हैं उसके वाइब्रेशंस बाहर फैलने लगते हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं वो उसकी ओर जाने लगते हैं। अब बात है कि वो उसको रिसीव करता है या नहीं। तो हम एक ऐसा टाइम निश्चित कर लें, जैसे सवेरे जब वो व्यक्ति सोया हुआ है, और हम उससे जुड़े पहले स्पिरिचुअल लेवल पर, यानी मैं आत्मा हूँ और वो भी एक आत्मा है, हम दोनों भाई भाई हैं, वो भी महान है, तो हम उससे जुड़ गए, आत्मा आत्मा से जुड़ गई, माइंड माइंड से जुड़ गया, सबकॉन्शियस माइंड उसके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ गया, क्योंकि उस समय वो व्यक्ति सोया है तो सबकॉन्शियस माइंड उसका जगा हुआ है। अब हम उनसे वो बात करें जो हम कहना चाहते हैं, माइंड टू माइंड। कोई भी मान लो रिलेशनशिप की बात है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा है और पत्नी समझदार है थोड़ी, और वो सोचती है झगड़ा समाप्त हो जाए, तो सवेरे जब पति सोया है 5 बजे 6 बजे वो ये अच्छा अभ्यास कर ले, उससे जुड़े पहले और अपने अंदर स्नेह सम्मान शुभ भावना उसके लिए पैदा करे, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि मनुष्य में थोड़ा इरिटेशन, थोड़ी घृणा, थोड़ी निगेटिविटी, ये है ही ऐसा, ये सुधरेगा नहीं, ऐसी भावनाएं होने से ये शुभ भावनाएं तो नहीं है ना। तो हम शुभ भावनाएं रखें, सम्मान भी, मेरा पति है बहुत अच्छी आत्मा है, आखिर जीवन भर हमें साथ रहना, प्यार भी वो बहुत अच्छा है, देखो उस समय उसने मुझे कैसे मदद की, इस समय उसने मुझे कैसा प्यार दिया, उस टाइम उसने मेरी कैसी समस्या हल की, ऐसी 2-4 बातें याद करके उसके अवगुणों को नहीं तो गुणों को देखकर, उसके कर्तव्यों को देखकर उससे प्रेम पैदा करें। फिर जो राजयोग का अभ्यास करते हैं वो 5 मिनट उस आत्मा को वाइब्रेशंस दे दें और फिर माइंड टू माइंड बात करें, सम्मान की बात पहले, तुम बहुत अच्छे हो, वो जो घृणा भाव था अब उसे समाप्त करना है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम तो देवकुल की महान आत्मा हो, तुम तो भगवान के बच्चे हो, एक बहुत गुड फीलिंग जाने लगी, अब ये गुड वाइब्रेशंस उसको जाने लगेंगे। फिर उसके लिए शुभ भावनाएं, वो नहीं कि ये बदलेगा नहीं, तुम तो बहुत अच्छे हो, पहले बहुत अच्छे थे अब भी बहुत अच्छे हो जाओगे। फिर कुछ अच्छे संकल्प दे दें कि हमें एक दूसरे की बात सुननी है, हमें एक दूसरे को सम्मान देना है, हमें एक दूसरे को बहुत सहयोग देना है, हमें इरिटेट नहीं होना, अच्छी अच्छी बातें करें, तो ये वाइब्रेशंस उसको जाने लगेंगे मन के और वही संकल्प उसको कैच होने लगेंगे। और इसमें बहुत बड़ा फायदा ये होता है, जब माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन होता है और विद गुड फीलिंग होता है, तो दूसरा व्यक्ति अपनी गलतियों को रियलाइज करता है, उन्हें ठीक करना चाहता है। ऐसे ही और बहुत अच्छे कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं जो हम सिखाते हैं लोगों को, पति सहयोग नहीं दे रहा है, सवेरे उठते ही हम उसे आत्मा देखें और संकल्प करें, ये आत्मा मेरी संपूर्ण सहयोगी है, तो उसके अंदर वो वाइब्रेशंस जाएंगे और उसके असहयोग की भावना सहयोग की भावना में बदलने लगी। तो ये जो कम्युनिकेशन है, ये दूसरे को बदलने में, अपना फ्रेंड बनाने में, अपनी बात इस तरह से हम दूसरों को कहेंगे तो ये बहुत अच्छा परिणाम दिखाएगा।
बिल्कुल। तो क्या यही राज्यों है ब्रदर जी जो आप कह रहे हैं कि हम ऐसे माइंड टू माइंड कन्वे करें, या राज्यों कुछ और है और ये कन्वे करना उसके साथ साथ जोड़ा जा सकता है?
देखिए, राजयोग तो है आत्मा का, जो हम इनर सेल्फ है, जो हम आंतरिक शक्ति है, उसका सुप्रीम सत्ता से कनेक्शन, उससे हम कम्युनिकेट करते हैं, उससे हम बात कर सकते हैं, उससे हम कुछ पूछ सकते हैं, उसकी जो फीलिंग्स हैं या उसका जो उत्तर है उसको हम कैच कर सकते हैं, और इससे हमारी पावर बढ़ेंगी, और जितनी हमारे अंदर पावर होती हैं हमारे वाइब्रेशंस दूसरे मनुष्य को उतने ही पावरफुल्ली इफेक्ट करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति कॉमन मैन भी ऐसे बात कर सकता है, उसको इफेक्ट होने में लंबा समय लग सकता है, पर एक अच्छा योगी यदि ऐसा कम्युनिकेट करता है तो उसका इफेक्ट उसको 2-3 दिन में ही दिखाई देने लगेगा। तो ये राजयोग का एक अलग हिस्सा है, योग की शक्तियों का प्रयोग है।
अपने आप को परमात्मा से जोड़ ले, उसके पश्चात हम ये योग का प्रयोग
कर सकते,
ये वाली बात है। दूसरी बात बताते जी, जैसे विशेष करके हम कहते हैं कि जब कभी हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात आती है तो उसमें विशेष करके परमात्मा के साथ वाली बात, तो इस चीज को भी हम क्या सारे दिन सहज रूप से कर सकते हैं कि लगातार उनसे बातें होती रहें, या ये जो कम्युनिकेशन है हमारा बहुत सहज और सरल बना रहे?
ये बिल्कुल सहज बना रह सकता है। शर्त ये है, देखिए संसार में भी कम्युनिकेशन अच्छा तब होता है जहाँ रिलेशनशिप हो, और उससे भी अच्छा होता है बिल्कुल अपनापन हो
जी।
हम बात ही उससे करेंगे, चाहे हमारा टेलीफोन से कम्युनिकेशन होता हो, चाहे हम मुख से कुछ कम्युनिकेट करते हो, जिससे हमारा रिलेशनशिप है और बहुत गहरा अपनापन है। परमात्मा भी हमारा परम पिता है। भक्ति करते, शास्त्र पढ़ते हुए हम इस बात को भूले रहे। देखिए लोगों ने ये भी कहा एक ही एक है, दूसरा कुछ नहीं, लेकिन उस दृष्टि से एक दूसरे को देखा नहीं, दृष्टि रखी ऊंच नीच छोटे बड़े की, तो वो प्रैक्टिकल नहीं हुआ। परमात्मा ने आकर सिखाया तो मुझे रोज परम पिता कहते हो, मात पिता कहते हो, तो तुम्हारे शास्त्रों में भी है, तो मैं तुम्हारा पिता हूँ, स्वीकार करो इस रिलेशनशिप को। हम भक्त हैं, हम तो मांगने वाले हैं प्रभु हमें शांति दो, बुद्धि दो, सफलता दो, ये नहीं, अब मैं तुम्हारा हूँ, जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा है, ये अधिकार ये रिलेशनशिप से आएगा। और फिर वो है ही हमारा, पिता हो गया, वो मेरा परम पिता है। इस शब्द को थोड़ा सा ठीक कर लें, वो मेरा है
जी,
तो बहुत सुंदर अपनापन फील होने लगेगा। वो तो हमें अपनापन दे ही रहा है, हम थोड़ा दूर हैं उससे, इसलिए उसके अपनेपन को फील नहीं कर पाते। तो ये अपनापन और रिलेशनशिप दोनों चीजें जब जुड़ेंगी उससे, तो उससे हमारा कम्युनिकेशन इजी होगा, तो वो हमारी हर बात सुनेगा, हर बात का रेस्पॉन्स देगा, और बिकॉज ऑफ लवफुल फीलिंग हम उसकी बात को रिसीव भी करने लगेंगे।
और इसीलिए शायद बताते जी, कई बार बाहरी रूप में यदि देखा जाए तो ये कहा जाता है कि आपको एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए यदि आपको अच्छी ढंग से कम्युनिकेट करना है तो, क्योंकि जब तक हम ठीक से सुनते नहीं हैं तब तक समझ नहीं पाते, और समझ नहीं पाते तो ठीक से हम कम्युनिकेट नहीं करते, गड़बड़ा जाता है। तो आज ये भी एक समस्या रहता है जी बहुत बड़ी, कि लोग सुनते कम हैं बोलते ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को? क्योंकि ये आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन में ये बताया जाता है कि आपको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, कि आप अच्छे से सुने, लेकिन सुनने की क्षमता बहुत कम हो गई है।
अगर हमें अपनी बात दूसरे को ठीक से कहनी है
जी,
कन्विंस करना है, सहमत करा देना है, तो दूसरे की बात सुननी तो पड़ेगी, लेकिन हम सुनना नहीं चाहते, तो इसमें हम अपने अंदर उनके प्रति पहले ही एक निगेटिव फीलिंग अपना लेते हैं, ये जो कहेगा वो गलत है, ये अपनी बात कहता है, ये झूठ बोल रहा है, इसको किसने उकसा दिया है, ये ऐसे ही बोलता है, नहीं सुनना है तुम्हारी बात, सुनो ये बात ऐसे ही करनी होगी। इससे भले मान लो कहने वाला बड़ा अधिकारी है और सुनने वाला छोटा है तो बेचारा करेगा, लेकिन उसको मजा तो नहीं आएगा ना। इसलिए सचमुच दूसरे की बात अच्छी तरह से सुनना और फिर कन्विंस कर देना, ये कर्म कराने की भी बहुत सुंदर कला है। जो लोग कर्म करा रहे हैं, जो लोग जिम्मेदार हैं, डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जनरल मैनेजर हैं, या एक फील्ड का मैनेजर है, वो अपने साथियों से काम तभी अच्छी तरह करा सकेगा जब वो सच्चे दिल से काम करें, और सच्चे दिल से मनुष्य तब काम करता है उनकी बात सुनी गई हो, फिर उनको कन्विंस किया गया तो वो कहेगा हाँ हाँ ये तो हमारी अपनी चीज हो गई, तब वो विद रेस्पॉन्सिबिलिटी उस कार्य को करेगा, अन्यथा भाई इनका ऑर्डर है तो हमें करना ही है आधे मन से, और वो काम हमेशा सफल नहीं होते, वो बहुत एफिशिएंट भी नहीं होते, इसलिए हमें धैर्य चित्त होना चाहिए। इसमें जो मुख्य बात है, ईगो जहाँ मनुष्य में ज्यादा होता है, अपनी अथॉरिटी का अभिमान ज्यादा होता है, वहाँ वो सुनता नहीं दूसरे की। सुने तो अवश्य सुनेंगे, तो वो हमारी अच्छी तरह सुनेगा
बिल्कुल। लेकिन बता जी, ये चीज एकदम प्रैक्टिकल देखने में ये बात आती है कि अभी सुनने की क्षमता हरेक की कम हो गई है, कोई ज्यादा सुन नहीं पाता है, इतना मतलब पेशेंस अपने पास नहीं रख पाता है, तो इसे कैसे बढ़ाया जाए कि सामने वाला सुना रहा है तो हम उस बात को बहुत ही पेशेंटली सुन लें?
इसमें पेशेंस भी चाहिए, बहुत अच्छी धैर्य चित्त स्थिति, इसमें मनुष्य को बहुत अच्छा पेशेंस धैर्यवती स्थिति चाहिए, और साथ में एक अच्छे व्यक्ति को हमेशा सोचना चाहिए, सारे संसार के लिए है। कि वो अपने ईगो को समाप्त करता चले और सबके लिए एक अच्छी भावना पैदा करता चले।
एक मेल हमारे पास आया था जिस विषय पे हमारी चर्चा हो रही है और कल हम लोगों ने बात की थी, आपके ख्याल में ये बात होगी कि कई लोग बहुत हेजिटेट करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो चंद्रमोहन जी हैं और ये कहते हैं कि अब मेरी पोस्टिंग हुई है अच्छे स्थान पे और साथ ही साथ मेरा प्रमोशन भी हुआ है, तो लेकिन मेरे अंदर एक भाव आ गया है कि मैं लोगों के बीच नहीं बोल पाता हूँ। पब्लिक में जब कभी मुझे बोलना होता है, दो चार लोग होते हैं तब तो मैं इजीली बोल लेता हूँ, लेकिन यदि बहुत बड़ी मास का अटेंशन यदि मेरी तरफ हो तो मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करता हूँ, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ। तो मुझे क्या विशेष करना चाहिए, क्योंकि अब मैं ऐसे पोस्ट पे पहुंच गया हूँ जहाँ मुझे लोगों को बोलना भी है, तो मैं बोलना सीखना चाहता हूँ कि आपके यहाँ भी कुछ इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जा सकती है, कृपया मुझे सजेस्ट करें। ये बहुत सारी लोगों की प्रॉब्लम है ब्रदर जी, कि कभी ऐसे स्थानों पे पहुंचते हैं, लोगों ने देखना शुरू किया तो हम अच्छे ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं।
इसमें दूसरों के वाइब्रेशन हम जल्दी रिसीव कर लेते हैं जी, और एक अपनी नेचर भी है, अंदर में एक फियर भी बना रहता है, तो थोड़े थोड़ों से ही शुरू करना चाहिए। जैसे हम लोगों को हुआ, हमारे यहाँ एग्जीबिशंस लगती थी, अब भी लगती हैं, तो हम लोग चित्रों पे लोगों को समझाया करते थे, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, अपने में विश्वास हुआ कि नहीं, अरे ये तो बोलना बहुत इजी है। और साथ में क्या पता चलने लगा कि जिनके सामने हम बोल रहे हैं वो इस बारे में कुछ जानते ही नहीं है, जो कुछ हम बोलेंगे वो उनके लिए बहुत सुंदर बात होगी। कभी कभी हम मनुष्य ये भी सोचता है, जैसे एक कॉलेज में गए प्रोग्राम करने के लिए, सब प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स बैठे थे, प्रिंसिपल और उनके सब कर्मचारी। अभी एक बहन थी वो तो डर गई, सारे प्रोफेसर बैठे हैं, क्या बताऊं, मुझे भी कहा मैं क्या बताऊं। मैंने कहा तुम कुछ ना बताओ, आत्मा का ज्ञान दो, 5-10 मिनट, 5-7 मिनट परमात्मा का, और बताओ उससे योग लगाना, बस कहा ये बता दूं, ये इनसे काम हो जाएगा। मैं कहा तुम यही बताओ, बाकी हम संभाल लेंगे। तो उसने ये बताया, अभी हमने बहुत अच्छा बोला लेकिन बाद में लोग उसके पास पहुंच गए, अरे बहन जी आपने इतनी अच्छी बातें बता दी। तो मैंने उन्हें कहा कि प्रोफेसर तो अपने सब्जेक्ट का है, तुम्हारे सब्जेक्ट का थोड़ा ही है, तुम्हारे सब्जेक्ट के बारे में वो कुछ नहीं जानते। तो अपनी जो फीलिंग्स है, जो ये डर है, ये अच्छे बड़े बड़े लोग बैठे हैं और एक बहुत बड़े बड़े VIP बैठे हैं, लेकिन ठीक है वो किसी फील्ड में VIP हो सकते हैं, लेकिन हम जो उन्हें बात कह रहे हैं उसके फील्ड में तो नहीं है ना। तो इस तरह हम अपने अंदर के भय को समाप्त करें, और जैसे इनको 4-5 के सामने ये ठीक से बोल सकते हैं, उस कला को ये बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में स्वमान का बहुत अच्छा अभ्यास और आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, मान लो इनको 100 लोगों के बीच में बोलना है और मान लो माइक इन्हें थमा दिया गया, तो ये अभ्यास करें कि मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, मेरे साथ तो परमात्मा शक्तियाँ हैं और ये सब भी बहुत अच्छी आत्माएं बैठी हैं, वो लाइक करेंगी मैं जो कुछ भी कहूँगा। मन उसको पहले ही क्या हो जाता है, पता नहीं इन्हें अच्छा लगेगा या नहीं, ये सुनाऊँ या ये सुनाऊँ, ये फीलिंग नहीं, एक बहुत अच्छी फीलिंग दे दें कि सब बहुत अच्छे लोग बैठे हैं और जो हम इन्हें सुनाएंगे वो सबको बहुत प्रिय लगेगा, इनको कुछ ऐसी बातें बतानी है जिनसे ये कार्यों में और अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो अपने को इस तरह से तैयार करें, इससे भय भी इनका समाप्त हो जाएगा और धीरे धीरे जैसे बोलने की प्रैक्टिस होगी फिर ये अच्छा बोल पाएंगे।
मान लीजिए मुझे बोलना है किसी विषय पे, तो यदि मुझे 1-2 दिन पहले पता चल गया है तो क्या मैं उसे स्क्रिप्ट उसकी तैयार कर लूँ, उसके बाद बोलने की प्रैक्टिस करूँ, क्या ऐसा भी कुछ करना चाहिए?
हाँ, ये सब प्रैक्टिस भी पहले से ही करना चाहिए और स्क्रिप्ट भी थोड़ी सी तैयार करनी चाहिए, कुछ पॉइंट्स बस, सारा का सारा ना तैयार कर ले, नहीं तो ध्यान पब्लिक की ओर ना, उस कागज की ओर रहेगा,
मतलब रटने वाली बात,
उसमें इफेक्ट नहीं रहेगा हमारे बोल में, इसलिए बस 5-7 पॉइंट लिख लिए, इन पे बोलना है और बहुत कॉन्फिडेंटली बहुत सहज भाव से, जैसा मैंने बताया था कि हम वो ना बोलें जो हम बोलना चाहते हैं, हम वो बोलें जो लोग सुनना चाहते हैं, तो एक बहुत नेचुरल स्वरूप, जो लोग रट के बोलते हैं तैयार करके बोलते हैं उनसे ज़्यादा इफेक्टिव उनका रहता है जो नेचुरल बोलते हैं किसी विषय पर। तो इससे ये स्वमान आदि की प्रैक्टिस पहले से भी रखनी चाहिए, और जिनको अभी बोलने की प्रैक्टिस नहीं उन्हें कुछ लिख भी लेना चाहिए, और अगर बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं तो चलो रट ही लेना चाहिए, लेकिन अपने अंदर के भय को निकालने के लिए ये स्वमान की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है।
कई बार होता है जी जब मंच पे जाते हैं ना, तो ऐसे लोग, जैसे इन्होंने आगे भी लिखा है, वैसे तो इनका लंबा चौड़ा मेल है, मैंने सार में लिया था, कि कंपन होने लगते हैं, हाथ पैर में भी कंपन होने लगता है और जो बोलते हैं उसमें भी लड़खड़ाहट सी होने लगती है और भूल भाल भी जाते हैं, ये वाली भी स्थिति आ जाती है। अब मान लीजिए मंच पे मैं खड़ा हूँ और ऐसी दयनीय स्थिति मेरी हो गई तो फिर मैं क्या करूँ?
कईयों की हो जाती है, कई लोग बताते हैं, क्योंकि भय होगा तो सब कुछ भूल भी जाएगा और वो कुछ का कुछ भी बोलेंगे। इसलिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, स्वमान की प्रैक्टिस से एक सहज भाव अपनाते हुए अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे तो ये भय खत्म
हो जाएगा। ये कह रहे थे कि क्या आपके यहाँ कोई ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें बोलना सिखाया जाता है, स्पीच देना सिखाया जाता है, तो क्या माउंट आबू में या फिर जो अलग ब्रह्म कुमारीज की ब्रांचेज हैं क्या ऐसी कुछ ट्रेनिंग भी दी जाती है?
देखिए हमारे यहाँ हेड ऑफिस में तो होता ही है, जब टीचर्स की ट्रेनिंग होती है उन्हें रोज 15-15 मिनट बोलने को दिया जाता है, पर ऐसी प्रैक्टिस हमारे सभी सेवा केंद्रों पर थोड़ी बहुत तो चलती है। जिनको ऐसी इच्छा है वो अपनी बात ये रख भी सकते हैं टीचर बहनों के सामने, तो उनको 10-10 मिनट का मौका दिया जाएगा और धीरे धीरे वो उसको इम्प्रूव करते चले। फिर भाई ऐसे एड्रेस करना चाहिए, टॉपिक को ऐसे लेना चाहिए, आउट ऑफ टॉपिक नहीं जाना चाहिए, कैसे उसमें हंसाना बहलाना भी चाहिए, ये सब चीज़ें मनुष्य धीरे धीरे सीखता जाएगा, टॉपिक भी तैयार होता जाएगा। लेकिन बस मुख्य चीज़ ये है कि भय खत्म हो जाए।
बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप जी, कम्युनिकेशन पे सचमुच बहुत ही सुंदर चर्चा हमारी हो रही है, सुंदर प्रकाश मिला है दोनों पे ही, वर्बल पे भी नॉन वर्बल पे ही। मुझे लगता है कि हमारे सभी दर्शक इसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि व्यक्ति जब से पैदा होता है तब से जीवन पर्यंत तो उसे ये कम्युनिकेशन में रहना ही पड़ता है, अपनी बातें रखनी पड़ती हैं। ये सारे टिप्स उनके काम आएंगे। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों ढेरों डिस्कशन हमारी हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें मिली हैं हमें, लगातार इनका हमें अभ्यास करना होगा। नॉन वर्बल की जहाँ तक बात थी तो हमें अपने आप को उनसे जोड़ना होगा, जहाँ तक परमात्मा की बात है उनसे जब हम कनेक्ट हो जाते हैं तो सचमुच सारी चीज़ें सारी स्थितियाँ बहुत क्लियर होती चली जाती हैं, क्योंकि एक साथ का अनुभव होता है ना कि सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरे साथ हैं, उनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो सारी सृष्टि बहुत खूबसूरत लगती है और अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपनी बातों को सामने वाले के सम्मुख रखना बहुत इजी, बहुत सहज हो जाता है। और जहाँ तक रही बात भाषण आदि की कि हम लोगों के बीच अपनी बातों को नहीं रख पाते, थोड़े अभ्यास से, वो कहा भी जाता है ना कि प्रैक्टिस करते करते व्यक्ति परफेक्ट हो जाता है, तो यदि मेरी प्रैक्टिस नहीं है, धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते करते परफेक्शन तक पहुँचे, योग का भी लगातार अभ्यास करते रहें। और साथ ही एक महत्वपूर्ण बात है कि हम अपनी लिसनिंग जो स्किल है या आर्ट ऑफ लिसनिंग है, इसे भी हम बढ़ाते जरूर चलें, क्योंकि ये बात जरूर होती है कि जितना आप अच्छा सुनते हैं उतना ही आप अच्छा बोल पाते हैं, उतना ही अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हैं। और आज ये हो गया है कि हम बहुत कम सुनते हैं और बहुत ज़्यादा बोलते हैं। वो कहते हैं ना, देखिए प्रकृति ने भी, परमात्मा ने भी हमें दो कान दिए हैं और एक मुँह दिया है ताकि हम ज़्यादा सुने और कम बोलें, लेकिन हो ये गया है कि हम सुनते कम हैं और बोलते ज़्यादा हैं। इसके कारण शायद ये जो कम्युनिकेशन हमारी है ना, उसमें कहीं ना कहीं हमें असफलता मिलती है या हम ठीक ढंग से अपनी बातों को नहीं रख पाते। पति पत्नी की बात जब कभी आती है तो कहते हैं ना कि एक पत्नी अपने पति को डॉक्टर के पास लेके गई, कहा कि डॉक्टर साहब ये रात को बहुत बोलते हैं, मतलब नींद में बोलते हैं। तो डॉक्टर साहब ने प्यार से कहा, बहन जी आप इन्हें दिन में भी तो बोलने का अवसर दिया कीजिए, यदि आप दिन में इन्हें बोलने का अवसर नहीं देंगे तो बेचारी क्या करेंगे, रात में ही बोलेंगे। एक ऐसे ही पति महोदय भी पहुंचे डॉक्टर के पास, बोले कि मैं बहुत थकान महसूस करता हूं। तो डॉक्टर ने कहा, सचमुच आप बहुत थके हुए हैं, आप मतलब आपको प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है, मैं आपको नींद की गोली दे रहा हूं कि आप अपनी पत्नी को खिला दीजिएगा। तो कई बार संबंधों में ऐसा होता है मित्रों कि आपस में बहुत सुंदर संबंधों के लिए भी, एक दूसरे को समझने के लिए और अपनी बातों को कम्युनिकेट करने के लिए, हम इन सब चीज़ों का भी, आर्ट ऑफ लिसनिंग की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इन पर बहुत गहराई से विचार कीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है, गहन है, चिंतन करने योग्य है और जीवन में लाने के योग्य है, क्योंकि जब हम इन्हें जीवन में लाएंगे तभी सफलता हमारे कदम चूमेगी। तो आप सफल हों, आगे बढ़ते रहें और कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत बेहतरीन हो, यही हमारी शुभकामना है। नमस्कार।